आस्था को शाम का वक्त बड़ा ही खूबसूरत और सुहाना सा लग रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आस्था ने नोटिस किया कि गार्डन से बड़ी ही ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी। आस्था का दिल किया कि वो थोड़ी देर के लिए गार्डन में चली जाए और वहां पर थोड़ा सा टहले, क्योंकि उसे गार्डन की ठंडी हवाएं अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इसलिए आस्था बिना कुछ सोचे समझे जल्दी ही गार्डन की ओर जाने लगी। गार्डन में एक शख्स बिल्कुल फॉर्मल कपड़ा में अपने हाथ में कुछ दवाई लिए पौधों में दवाई छिड़क रहा था। आस्था जैसे ही गार्डन में गई और उसने इस तरह से एक शख्स को पौधों में कुछ दवाई छिड़कते हुए देखा तो वो हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि ये आदमी कौन है और इस तरह से ये पौधे के साथ क्या छेड़खानी क्यों कर रहा है, और कहीं ये सारे पौधे तो काटने वाला नहीं है। वो आदमी हाथ में कैंची लेकर पौधे काट रहा था। जैसे ही आस्था ने ये देखा वो घबरा गई और जल्दी से आगे बढ़कर उस शख्स का हाथ पकड़ लिया। वो शख्स हैरानी से आस्था की ओर अपनी गहरी काली आंखों से देखने लगा। आस्था भी उसकी आंखों में देख रही थी। एक पल को आस्था थोड़ी सी डर भी गई थी, क्योंकि उसके सामने एक लंबा चौड़ा मजबूत मर्द खड़ा हुआ था, लेकिन पौधों को कैंची से बड़ी आसानी से काटता हुआ देखकर आस्था को अजीब लगा, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया था और गुस्से से उसकी ओर देखकर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? इस तरह से पौधे काटकर उन्हें खत्म नहीं कर सकते हो, ये गलत है। आस्था के कहने पर उस आदमी के चेहरे पर बल पड़ गए। आस्था ने कहा, मुझे इस तरह से गुस्से से क्यों घूर रहे हो? तुम जानते हो इस घर में एक बंदूक वाला मॉन्स्टर रहता है जो बात बात पर बंदूक चला देता है। अगर उसने तुम्हें इस तरह से उसके गार्डन के फूलों को काटते हुए देख लिया तो वो मार मार कर तुम्हारा कीमा बना देगा, समझे तुम? अरमान ने अपने सामने खड़ी हुई दुबली पतली सी लड़की की बातें सुनी, वो हैरान हो गया और सोचने लगा कि उसी के घर में उससे ऊंची आवाज में इस तरह से बात करने वाली लड़की आखिरकार है कौन। फ्लैशबैक, अरमान जैसे ही अपनी मीटिंग के लिए पेरिस जाने के लिए निकला, मौसम खराब होने की वजह से उसके प्राइवेट जेट को वापस लैंड करना पड़ा। अरमान ने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर ली थी और पूरे एक हफ्ते बाद अपनी मीटिंग रखी थी। ऑफिस का सारा काम खत्म करने के बाद अरमान जल्दी ही ऑफिस से घर आ गया। घर आते ही उसकी नजर अपने एक सूखे पौधे पर पड़ी। अरमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही शौक था, पौधे लगाने का, साथ ही साथ उन पौधों की छोटी छोटी केयर करने का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए वो अपने पौधों पर इतना सा भी सूखापन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरमान के घर के गार्डन में दुनिया के सबसे महंगे महंगे पौधे मौजूद थे जिनकी देखभाल खुद अरमान किया करता था, और अभी भी अरमान बड़े ही प्यार से पौधों की छटाई कर रहा था, जिन्हें आस्था ने गलत समझ लिया। उसने सोचा कि शायद ये कोई घर में काम करने वाला नौकर है या माली है जो इस तरह से पौधों को काट रहा है। आस्था को इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि वो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वो सूखे पौधों की छटाई कर रहा था। अचानक आस्था को इस तरह से अपने सामने चटरपटर करता हुआ देखकर अरमान अपनी गहरी काली आंखों से उसे घूरने लगा था। तब आस्था उसकी ओर देखकर बोली, हद है यार, एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और एक तुम हो कि मुझे ही घूर कर देख रहे हो। अभी भी मौका है, वो मॉन्स्टर 2 दिनों के लिए पेरिस गया हुआ है, तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और भाग जाओ यहाँ से। वैसे भी आस्था बहुत कम लोगों को ही सलाह देती है, अब तुम्हें मेरी सलाह लेनी है लो, वरना मत लो, तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर आस्था जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटी, अचानक अरमान ने अपने हाथ से उस बड़ी सी कैंची प्रूनिंग नाइफ को फेंक दिया था और सीधा आस्था का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था। आस्था उस वक्त अरमान के बेहद करीब थी और उसके सीने से लगी हुई थी। एक पल को अरमान भी उसकी खूबसूरती में खोसा गया था, लेकिन आस्था अरमान की हरकत से पूरी तरह से हैरान हो गई और बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरा हाथ पकड़कर खींचने की? हाँ, एक मामूली सा नौकर हो तुम, नौकर ही बनकर रहो, समझे तुम? एक तो मैं यहाँ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और एक तुम मेरे साथ ही ऐसी हरकत कर रहे हो। आस्था के कहने पर अरमान उसकी ओर गुस्से से आग बरसाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने की? आज तक मुझसे इस तरह से किसी ने भी बात नहीं की है और तुम हो कि मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर रही हो। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। गुस्से में उसने जल्दी अरमान से अपना हाथ छुड़ा लिया और थोड़ा सा पीछे खड़ी होकर बोली, अरे वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैं यहाँ तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और एक तुम हो जो मुझे ही तड़ी दिखा रहे हो। अरमान आस्था की बात सुनकर कन्फ्यूज हो गया और बोला, तड़ी, ये तड़ी क्या होता है? तब आस्था ने अपना एक हाथ सर पर मार लिया और सोचने लगी, लगता है उस खतरनाक बंदूक वाले मॉन्स्टर ने घर में नौकर भी अपने जैसे ही रखे हैं। तो वो बोली, तुम्हें तड़ी नहीं पता, तड़ी क्या होता है? देखो, तड़ी का मतलब होता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे ही आंखें दिखा रहे हो, मेरे सामने ही टशन झाड़ रहे हो। आस्था ने अरमान को बड़े ही खुले शब्दों में तड़ी का मतलब समझाया। अरमान अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर कर देखने लगा। तभी अचानक आहान, जो कि आज कॉलेज से जल्दी लौट आया था, आस्था के साथ टाइम बिताने के लिए जल्दी ही घर आ गया था, और जैसे ही उसकी नज़र आस्था और अरमान पर पड़ी तो उसकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुल हो चुकी थी। जल्दी से दौड़कर वो वहां आ गया और उन दोनों के पास खड़े होकर लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगा। आस्था आहान को देखकर बोली, अरे आहान जी,
आप आ गए इतनी जल्दी। आपने तो बोला था कि आप रात को 8 बजे के बाद आएंगे। आहान एक नज़र कभी अरमान को देख रहा था और फिर दूसरी नज़र से अपने सामने खड़ी हुई आस्था को देख रहा था और मन ही मन में सोच रहा था, कल रात तो भाभी इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि डर के मारे थर थर काँप रही थी। इतना ही नहीं, जब आज सुबह अरमान भाई की बातें हो रही थी तब भी वो भाई के नाम से भी काँप रही थी, लेकिन अब तो यहाँ पर भाई की आंखों के सामने बिल्कुल शेरनी बनकर खड़ी हुई है। लगता है दादाजी ठीक ही सोच रहे थे कि अरमान भाई को अगर कोई सुधार सकता है तो सिर्फ आस्था भाभी ही ये काम कर सकती है। अरमान गुस्से से घूर कर आहान को देखने लगा और बोला, कौन है ये लड़की, तुम जानते हो इसे और ये यहाँ क्या कर रही है? आहान के जवाब देने से पहले आस्था तुरंत आहान के सामने जाकर खड़ी हो गई और अरमान की ओर देखकर बोली, अरे वाह, ये किस तरह से बातें कर रहे हो तुम अपने मालिक से? क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने इतनी सी भी तमीज़ नहीं सिखाई है कि किस तरह से बात करते हैं किस तरह से नहीं? और वो तुम्हारे मालिक हैं, क्या तुम अपने मालिक से इस तरह से बातें करोगे? आहान ने आस्था की बातें सुनी तो उसने अपना हाथ अपने सर पर मार लिया और वो सारा माजरा समझ गया कि आस्था को ज़रूर कोई ना कोई गलतफहमी हो गई है और वो अरमान को कोई मामूली सा नौकर समझ रही है। आहान मन ही मन में आस्था के लिए दुआ करने लगा। आज उसकी प्यारी भाभी का इस घर में आखिरी दिन है। भले ही रात में भाभी गोली से बच गई हूँ, लेकिन अब तो अरमान भाई अपनी बंदूक की सारी गोलियाँ भाभी के भेजे में उतार देंगे, क्योंकि अरमान के सामने तो आज तक कोई भी खड़ा होकर ठीक से बात तक नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो आस्था भाभी सीधे सीधे उसके भाई की आंखों में देखकर बात कर रही है। आहान आस्था को कहने लगा,
आप मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है कि आपको इस वक्त अंदर जाना चाहिए, मैं अभी थोड़ी देर में आकर आपको सारी बातें समझाता हूँ। ऐसा कहकर उसने आस्था को वहां से अंदर जाने का इशारा किया। वो अरमान के सामने जानबूझकर आस्था को भाभी नहीं कह रहा था, क्योंकि उसे दादाजी की बातें याद थीं कि अरमान को इस बात के बारे में नहीं पता है कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से हुई है। अरमान गुस्से से आहान की ओर घूर कर देखने लगा। ऐसा लगने लगा था कि अरमान अपने गुस्से से अभी इसी वक्त आहान को जलाकर राख कर डालेगा। आस्था आहान की ओर देखकर बोली, लेकिन आप मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे, मैं तो यहाँ पर इस पागल नौकर को ये समझा रही थी कि इस तरह से पौधे तोड़कर ना फेंकें, उन पौधों को ना काटें, क्योंकि अगर तुम्हारे उस बंदूक वाले मॉन्स्टर भाई ने ये देख लिया तो पक्का इसकी जान ले लेगा। मैं तो यहाँ इसको बचाने के लिए आई थी, ऊपर से ये मुझे ही तड़ी पर तड़ी दिखाई जा रहा है, उल्टी सीधी बातें सुनाई जा रहा है। इतना ही नहीं, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। आस्था ने अपने भोलेपन में ये सारी बातें आहान से कही। आज के लिए इतना ही दोस्तों। दोस्तों, आस्था और अरमान की पहली मुलाकात आपको कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने कीमती रिव्यू दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।